هو نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. هم لوگ بک لولو والمرجان میں کتاب الامارہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے لاسٹ حدیث جو کی تھی 1204 کی تھی اور اس میں ہم نے امیر کی اطاعت اور امیر کی نافرمانی کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ کتنا بڑا یعنی بڑی بات ہے امیر کی نافرمانی کرنا. ہما غنی آپ ایک دفعہ مجھے اور بتائیں گی کہ امیر کی نافرمانی کیا سمجھی جاتی ہے اسلام میں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نافرمانی اسلام میں اطاعت مطلب حرام کے اس میں آ جاتا ہے. یہ
یعنی امیر کی نافرمانی کو کیا سمجھا جائے گا؟
گناہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب سوری وہ امیر کی حکم کو فالو نہیں کر رہے ہیں رعایا. تو یہ استاد میری یہ سمجھ میں آیا کہ گناہ کے برابر ہے. اللہ کا حکم ہے یہاں پہ, اللہ
اگر ہم
اور مسلمانوں
جی
پہ اطاعت کرنا لازم ہے.
اچھا اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں, جزاک اللہ خیرن, ٹیسٹ میں یہ پوچھتی ہوں کہ امیر کی نافرمانی کرنا کیسا ہے, تو آپ نے گناہ نہیں, گناہ تو ایک عمومی چیز ہو گئی نا, آپ نے پھر یہ کہنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث میں واضح ہے کہ امیر کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت ہے اور امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اب اس حدیث سے بھی آپ جی نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس حدیث سے بھی آپ یہ چیز لے سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, وہ اس حدیث میں دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یہ لولو والمرجان کی حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں جو کامن حدیث ہے, ایسی بھی نہیں ہے کہ کسی اور کتاب کی حدیث ہو جس پہ کوئی وہ شک کر سکتے ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری اور مسلم کو بھی شاید نہیں مانتے. حالانکہ یہاں پہ اللہ کی نافرمانی کے برابر اس کو بتایا گیا, تو جو منکرین حدیث ہیں وہ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں. کہ یہ معمولی بات نہیں ہے حدیث کو جھوٹنا اور کہنا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, کیونکہ حدیث کو نہ ماننا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی. تو وہ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے پھر, ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم نے حدیث نمبر 1206 جو ہے, یہ حدیث انتہائی امپورٹنٹ حدیث ہے. کلثوم آپ بتائیں گی کہ اس حدیث میں آپ کو کیا چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یہاں پر اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ یعنی جو امیر ہوتا ہے اس کا حکم ماننا صرف اطاعت میں نا, اگر وہ کسی ایسی چیز کا حکم دے جو کہ نیکی کا نہ ہو یعنی برائی کی طرف یا کوئی ایسی بات ہو جو اسلام کے خلاف ہو, تو پھر آپ اس کے اندر اس کی اطاعت نہیں کریں گے, ادر وائز آپ کو اس کی اطاعت کم دیا گیا نا.
صحیح, ٹھیک ہے, شاباش. یعنی یہ چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امیر کی اطاعت صرف اور صرف جائز کاموں میں ہوں گی جو شریعت کے مطابق ہیں, جو شریعت سے باہر نکلے میں احکامات, جو اللہ کی نافرمانی کے بعد وہ کوئی کرے گا تو اس میں چاہے امیر ہو چاہے شوہر ہو چاہے ماں باپ ہوں چاہے کوئی بھی ہو, ایک رول آف تھم اگر ہمیشہ یاد رکھیں گے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ دنیا کا کوئی انسان ہو جائے, وہ کسی بھی رشتہ کتنا بھی قریبی اور کتنا بھی بڑا اس کا حق ہو, لیکن جہاں پہ اللہ تعالی کی بات کٹ رہی ہو وہاں اس کا حکم نہیں ماننا, بس بات ختم نہیں ہو گئی. اب دیکھیں یہاں آپ کو اللہ کے حکم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں تھرو آؤٹ یہ بات ہو رہی ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے, امیر کی اطاعت کرنی ہے, لیکن یہاں پہ پتہ چل گیا نہیں, اگر امیر بھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دیتا ہے تو تب امیر کی بات بھی نہیں مانتی. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ امیر یہ نہیں کہہ رہا نماز نہ پڑھو, امیر یہ نہیں کہہ رہا روزہ نہ رکھو, ایک عام عمومی چیز کا وہ کہہ رہا کہ بھئی آگ جلائے اور جلاؤ اور اس کے اندر کود جاؤ, ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو خودکشی ہے اور خودکشی تو حرام ہے, یہ تو منع ہے, تو پھر اللہ کا حکم کٹا نا. तो जहां पे अल्लाह का हुक्म टूट रहा हो वहां पे किसी की भी इताअत जायज नहीं है। इवन जो खवातीन हस्बैंड का नाम लेकर कहती हैं तो हस्बैंड की भी इताअत वहां पे जायज नहीं है। आखिर हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है? अल्लाह ताला का। जिस जब हम ये समझते हैं इस बात को, तो फिर उसके बाद इसमें तो कोई बहस ही नहीं रह जाती कि उसके बाद जी इनकी माने के नहीं माने, वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। फिर ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए जी वो शौहर ये कह रहे हैं। तो फिर ये देख लो आप, अगर अल्लाह का हुक्म टूट रहा है तो फिर शौहर की कैसे फरमाबरदारी जायज हो गई। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम ने हुक्म की तामील की, यानी शुरू में कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनको ये समझ आ गई कि नहीं, हमें यहाँ पे अल्लाह ताला का हुक्म टूटता हुआ मालूम हो रहा है। यहाँ पे हम आग से बचने के लिए ही तो इस्लाम लेकर आए हैं, फिर क्या हम आग में दाखिल हो जाएं? तो इससे हमें पता चलता है कि ये भी एक अच्छा, एक और बात इसमें विजडम की है, वो क्या है, कोई और बताएगा? नाजनीन आप बताएंगी
जी सादा, और
और
बस
क्या बात
ये
है?
समझ आती है कि इंसान अपना खुद का भी दिमाग लगाए,
जी
ये नहीं है
शाबाश,
कि किसी के पीछे
वेरी
भी
गुड,
अंधे बन के
हाँ
चलते चले।
बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल इस यही पॉइंट के ऊपर मैं आपको वो करना चाह रही थी कि आप सोचें इस बात को कि सहाबा कराम ने अंधाधुंध नहीं कि भाई अब उन्होंने कह दिया हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अमीर की इताअत करनी है, चलो अब आग में कूद जाओ। नहीं, ये पॉइंट इसलिए बहुत ज्यादा आपके समझने का है कि आज के दौर के अंदर बाज आर्मीज में भी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं जी आप नहीं कर सकते, अपने जो भी आपसे ऊपर जो आपका बॉस है या जो भी आर्मी में रैंक्स होते हैं ना, आपका जनरल जो बोल रहा है, जो आप फील्ड में जाएंगे तो आपको उसकी इताअत करनी है, चाहे वो कुछ भी कह दे, चाहे वो कुछ भी कह दे, आपको वो मानना ही है। ये फौज के अंदर ज्यादातर होता है, यहाँ की आर्मी में, यूएस आर्मी में ये रूल नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें आखिर में, ये जब कोई हुक्म मानना हो। लेकिन दूसरी कई जैसे ब्रिटिश आर्मी वगैरह में और हमारे यहाँ ज्यादातर रूल चलते हैं, तो ये चीज के अपना दिमाग इस्तेमाल किया जाए इसकी कोई गुंजाइश नहीं समझी जाती। वो बस कहते हैं आपको मानना है, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है, तो किसी का भी ऑर्डर ऐसा ऑर्डर नहीं होता जिसके ऊपर इंसान अंधाधुंधी चल पड़े, ठीक है? और अपना दिमाग इस्तेमाल करना और देखना। मगर ये एक बात और इसमें समझ आती है, वो ये कि इससे पता चला कि आपके पास इल्म तो होना चाहिए ना, अगर आपके पास इल्म ही नहीं होगा क्या आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे? आपको क्या पता कि कहाँ पे अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, आप कोई चीज को समझ रहे हैं नहीं मुझे तो ये सही नहीं लग रही, हालांकि वो उसमें कोई मसला नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म नहीं टूटता उसमें, ये कोई कोई नाजायज चीज नहीं, लेकिन आपको इल्म ही नहीं, या आप किसी चीज को समझते हैं कि ये जायज है और ये जो इसने मुझे हुक्म दिया ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही करना चाहिए, हालांकि उसमें अल्लाह का हुक्म टूट रहा होता है। तो इससे पता चलता है इल्म की भी अहमियत का, कि इल्म की अहमियत कितनी ज्यादा है। जब आपके पास इल्म होता है तभी आप ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये इसने जो हुक्म दिया वो सही है या गलत है। और जिसके पास इल्म ना होगा वो क्या करेगा? जी आपने बिल्कुल सही कहा, बाज जगह पे जो तकलीद है खास तौर पे पीरों फकीरों और इनकी तकलीद का जो अकीदा है उसमें भी वो कहते हैं कि पीछे बस इनके चलो, जे इन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, जो वो शरीयत के हुक्मों के अंदर रह के कहेंगे तो जरूर उसको फॉलो करें, लेकिन जहां पे शरीयत के कोई हुक्म टूटेगा और उन वो कहेंगे हमारी अंधाधुंध तकलीद करो तो वो नहीं की जाएगी, ठीक है? इवन इन फैशन के नाम पे पीपल जस्ट फॉलो रहा है, बिल्कुल चाहे फैशन हो कोई भी चीज हो। अब देखिए ना, किसी चीज को भी अल्लाह से ऊपर नहीं ले जा सकते, सेठ फैशन या सेठ मुल्क का कानून, मुल्क के जो कवानीन बनते हैं मुल्कों के, वो भी अल्लाह के हुक्म से ऊपर जा रहे हो तो फिर नहीं हम उनको मान सकते कि हम कहें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी मुल्क के अंदर एक शादी को जो कि हमारा दीन कहता है ये हराम है उसको हलाल कर दिया जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं 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 ये बिल्कुल ठीक हो गया और अब हम भी इसको ऐसे ही मानने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि ये फिर चाहे आप इसको चाहे किसी में भी रख लेना। आप मैंने आपको जैसे बताया पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, मुल्क का कानून हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंड्स हो गए, कोई चीज कोई भी नाम रख ले, वो अल्लाह के हुक्म से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना जी, आपने अच्छा समराइज कर दिया कि जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, इट डजेंट मैटर हु इज टेलिंग, उसमें इल्म चाहिए। और यहाँ पे देखिए हुक्म किसका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अमीर की इताअत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कह के भेजा था कि आप इसकी इताअत करना, ये जो मैं अमीर बना रहा हूँ ये कोई ऐसे ही नहीं बनाया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था उनको अमीर, इन अंसारी सहाबी को। तो वो कह सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है इसने? नहीं, लेकिन उन्होंने आखिर तक भी जाके अपने जहन को इस्तेमाल किया और कहा कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, और कहीं पे भी अपने जहन को इस्तेमाल किए बगैर अंधाधुंध नहीं चलना। अच्छा, अगली हदीस में हमने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहद लिया था, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी राशिदा कालिया, आप बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज के ऊपर अहद लिया था अंसार से? अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी सबाहत, आप बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से बैत ली थी और उसमें क्या लिया था बैत में?
जी। वो ये अहद लिया था कि वो हर सूरत में जो उनके हुक्मरान होंगे उनको फॉलो करेंगे, चाहे खुशी हो चाहे ना सवारी हो, तंगी हो सादगी हो, और अगर इवन उनकी हक तलफी हो रही होगी तब भी करेंगे, फिर सिवाय उस वक्त नहीं करेंगे जबकि अगर उनमें कोई बात है तो सब देखने।
और ये किससे लिया था अहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
अंसार से
अंसार से, क्योंकि बैतुल अकबा की बात आ रही ना तो अंसार से ही थी। तो अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि क्या अगर किसी और को इनके ऊपर तरजीह दी जाएगी तो क्या फिर भी ये बैठ के बस इताअत करते रहे?
जी बिल्कुल।
उस वक्त भी उस निशाबा उस सूरत में भी उनको इताअत करनी जरूरी है, कि यानी हत्ता के अगर वो ये देख रहे हैं कि नहीं हमारा हक बनता है और हमारे ऊपर दूसरों को प्रेफरेंस दी जाती है, तब भी उनको ये चाहिए कि वो फरमाबरदारी करें अपने हुक्मरान की, इताअत करें अपने हुक्मरान की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी, ये भी ये एक बात को हमें समझना चाहिए कि ये कितनी जरूरी चीज है, ये क्यों इतनी जरूरी है। अच्छा, ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट इस हदीस के अंदर बताया है कि कमांडर को भी जो अमीर बनाया जाए उसको भी अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि ऐसे कोई हुक्म दे जो शरीयत के खिलाफ हो जी, और मानने वालों को नहीं अकल इसनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जी मैंने क्या सवाल पूछा था, सवाल मेरा जहन से निकल गया। जी आप बताना चाह रही हैं? नाहिद आंटी बताएंगी। जी बताइए, जी बताइए, आपकी लाइन मैंने अनम्यूट की भी है। नाहिद जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्यों ये इतना जरूरी है, हुक्मरान की इताअत पे इतना जोर दिया गया है, इतनी सारी अहादीस हम देख रहे हैं, क्यों जरूरी है इतना?
ठीक है, अगर हुक्मरान शरीयत के अंदर रहकर हुक्म दे तो हमें तकलीफ इसी यूनिट रहती ना।
जी
अगर हुक्मरान शरीयत के अंदर रह के हुक्म दे तो हमें मानना जरूरी है, लेकिन अगर आउट ऑफ शरीयत तो कोई बात है अल्लाह तब हमें
सही, लेकिन इससे इससे
तो
इससे उस मुमलिकत के निजाम पे क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क होगा अगर कोई मान रहे हैं या नहीं मान रहे? क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है?
कोई दूसरा हमला नहीं कर सकता हम पर,
इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा। ठीक है,
जमात मजबूत जमात बन जाती है,
सही
सब हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाए
मुसलमान।
सही,
शाबाश शाबाश। अच्छा ये, और दूसरा आप ये देखें, देखिए अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज्ड रहें, तो फिर जरूरी है कि सब के सब एक को फॉलो करें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें नमाज में मिलती है कि जहां पे जमात में हम एक इमाम को फॉलो करते हैं। अमीर होता है ना, जो इमाम होता है वो अमीर होता है उन लोगों का। पहले जमाने के अंदर तो जो खलीफा होता था वो ही असल में इमाम होता था, और उसके अलावा नहीं कोई, क्योंकि जो इमाम है उसको फॉलो किया जाता है। तो खलीफा जो होता था उसी का ये डेजिग्नेशन था। ये तो अब के वक्त है कि किसी को भी इमाम बना के खड़ा कर लो, या कोई भी इमाम बन जाता है चाहे वो इस काबिल हो या नहीं हो, लेकिन पहले वक्त में इमाम की फिर सुनी जाती थी। इमाम वही लोग बनते थे जो कि वाकई इस काबिल होते थे। तो अब उसके अंदर देखें, अगर एक के पीछे सारे चल रहे होंगे तो बिल्कुल इनकी बात सही, इत्तेहाद और इत्तेफाक तो होगा, डिसिप्लिन होगा। देखें आप आज भी फौजों का निजाम देखें, या सबसे पहले तो हमारा इस्लामी हमें नमाज का जो जमात का निजाम देता है, या आप फौज में देखते हैं, तो एक कॉशन होता है, एक ऑर्डर आता है, और वो सब के सब सलूट करने लगते हैं। एक कॉशन होता है तो सब के सब नीचे कर लेते हैं हाथ, मार्च करना शुरू कर देते हैं। आपका उसमें भी सब एक जैसे पैर उठा रहे होते हैं और रख रहे होते हैं, वो सेम पैटर्न करने की क्या जरूरत है, सब अपने अपने चले। या नमाज में सेम करने की क्या जरूरत है, सब एक ही वक्त में रुकू में जाए, एक ही वक्त में सजदे में जाए। आप देखते हैं ये कितनी खूबसूरत तस्वीर बनती है एक डिसिप्लिन की, एक ऑर्गेनाइज होने की। लेकिन जब हम सब अलग अलग हो जाते हैं, फट जाते हैं एक दूसरे से, किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई तरफ चल रहा है, कोई किसी की सुन रहा है, कोई दूसरे की सुन रहा है, तो सारा शिराजा बिखर जाता है। एक बिखरी हुई उम्मत जैसे आज आप देख रहे हैं, वर्सेस अगर आप कभी अल्लाह ताला तौफीक दे कि खिलाफत का पढ़ें, तो जितनी भी यानी बदतरीन से बदतरीन भी कोई खलीफा आए, बहुत बुरे बुरे भी आए, मगर एटलीस्ट क्या था, वो चीज कायम थी जिसकी आज हम सबके दिलों में आरजू है कि काश उम्मते मुस्लिमा एक हो जाए, एक खलीफा के अंडर होंगे तो सब एक होंगे। और आप डिफरेंस देख ही रहे हैं, एक खलीफा के अंडर होने क्या होता, और आज सब टुकड़ियों में बटे हुए हैं और अलग अलग सबकी बादशाहतें या निजाम है, तो कितना फर्क आपको लगता है ना? तो हमेशा जब एक हुक्मरान होगा, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए एक नुस्खा दे दिया था उस जमाने में, कि एक तुम्हारा खलीफा हो, तुम उसको फॉलो करना चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हें खुशी हो ना खुशी हो। जाहिर है कई रंजिशें होती हैं, देखें याद रखें, कोई टीचर हो, कोई खलीफा हो, कोई अमीर हो, कोई कोई भी ऐसा जो लोगों के कामों के ऊपर जिम्मेदार है, उसे हमेशा सब खुश नहीं हो सकते। आप पूरी खलकत को खुश कभी नहीं कर सकते, चाहे मुस्लिम रूलर हो गैर मुस्लिम हो, लेकिन कोई भी, यहाँ सब इंसान है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो हुक्मरान हो या एक बंदा अमीर हो उसे सारे खुश हो जाए। जरूर कोई ना कोई रंजिशें होंगी, जरूर कोई ना कोई शिकायत होंगी, ये ऐसे कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर एक बंदा अपनी तरह से सोचता है ना, मैं सोचूं जी ये टीचर ने ऐसे क्यों पढ़ाया, इनको तो ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, लेकिन जितना भी हो फॉलो उसी को करना है, तभी सब एक बन के चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चल सकते। और ये प्रॉब्लम हुआ फिर, और आज देखें हम सारी दुनिया में मुसलमानों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखें ये हदीसें छोड़ दी ना, इन्हीं को भूल गए, हमें तो कहीं नहीं कि ये भी हैं हमारे पास, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है खलीफा के बारे में। और फिर उसके बाद अतातुर्क के वक्त में जब खिलाफत तुर्कों से खत्म हुई थी, बस खत्म हो गई, फिर उसके बाद आज तक रिस्टोर नहीं हो सकी। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेके सोचे तुर्कों तक खिलाफत चली है। जी बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल का जो फलसफा है वो यूज किया गया, लेकिन देखिए हमने किसी को क्या कहना है, जब हमारे खुद के अपने आमाल हैं और अपनी हमारी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, और आपस के अंदर एक दूसरे के साथ जो इतनी ज्यादा राइवलरी है, दुश्मनियां हैं, बुग्ज हैं, उनका नतीजा ये निकला कि उसके बाद खिलाफत टूट गई और कभी दोबारा नहीं आ सकती। अब जो हालात हैं उसके अंदर कैसे आप सोच सकते हैं कि खिलाफत, अगर खिलाफत होती तो क्या ऐसा होता जैसे आज हो रहा है कि कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं, और हम हमेशा ये ख्वाहिश करते रहते हैं कि काश एक मुसलमान पे कोई मसला होता है तो दूसरे कुछ बोले, काश बोल तो दें। वो बोलते भी क्यों नहीं, क्योंकि हर एक अकेला अकेला हो गया, हर एक अलग अलग हो गया, और किसी को किसी की परवाह नहीं रही। पहले जब खिलाफत थी एक खलीफा के अंडर सारी इस्लामी दुनिया थी, जो कोई मुसलमान चाहे वो सऊदी अरब में हो या पाकिस्तान में हो या मिस्र में हो या कहीं और अफ्रीका के किसी भी मुल्क में हो, सब एक थे। तो ये अहादीस छोड़ दी तो आज देखें ये हाल हो गया। अब बुरा तो लगता है कहना कि अच्छा तंगी के अंदर भी क्या उसकी वो इताअत करें, खुशी में तो सभी करते हैं, नागवारी में भी उसकी इताअत करें, अच्छा अपनी हक तलफी हो रही हो तब भी उसकी इताअत करें, ये बात माननी तो बड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन यहीं से पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान में हमारे लिए खैर है। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो बात कह दी थी, अगर आज तक ये चल रही होती तो हम इस जो आज हालात हैं इस तक ना पहुंचते। ये हमारे अपने घर में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। यही चीज को अमीर सिर्फ मुमलिकत का नहीं होता, घर का भी एक अमीर होता है। और घर का अमीर अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया कि वो कवाम है, कि उसके अंडर रह के सारे उसकी बात को सुने। आप घर की ही एक मुमलिकत समझ ले ना, वो भी एक मुमलिकत है। उसी में अगर आप देख लें कि बेटा अपनी चला रहा है, बेटी अपनी कर रही है, बीवी कुछ और कर रही है, आदमी की कोई सुनता नहीं है, वो घर कैसा होता है बताएं, कैसा होता है वो घर, कितना बिखरा हुआ, कितना उसमें कुछ खैर नहीं होती। इसी को फिर आप बड़े स्केल पर ले आए, जब एक मुल्क होता है जब उसके अंदर भी एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, तो फिर बस सारा मुल्क ही बिखर के रह जाता है। उसमें इंतशार होता है, इसमें बेसकूनी होती है, जो आज हम देख रहे हैं दुनिया के ममालिक में। इसी तरह ये बात को बहुत जहन में अपने रखिएगा कि ये खलीफा की बात वो हो रही है जिसको इस्लामिकली खलीफा बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि हम जमहूरियत से वोटों से आए हुए किसी आदमी को, या वो जो आज बादशाह के नाम पे मुसल्लत हो जाते हैं कि मेरा बेटा बादशाह बनेगा, उसके बाद इसका बेटा बादशाह बनेगा, इसकी बात नहीं हो रही। क्यों ये बात मैं आपको कह रही हूं, क्योंकि ये अहादीस लेकर आज बाज जगहों पर इस्लामी मुमालिक में ही ये अहादीस चलाई जाती हैं और लोगों को कहा जाता है देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अपने अमीर की इताअत करो, तो अब ये तुम्हारे अमीर हैं, अब इनकी इताअत करो। और वो यानी काबिज हैं, वो उन्होंने गसब किए हुए हैं लोगों के हकों को और जबरदस्ती लोगों के ऊपर सवार बैठे हुए, जबकि वो खलीफा नहीं है। तो इस चीज को समझना चाहिए। ये चीज अप्लाई इस चीज पे नहीं होती कि अब आप अपनी गवर्नमेंट को कुछ भी गलत कर रही है आप उसको कुछ कह ही सकते, क्योंकि जी आपको तो हदीस में पढ़ लिया अमीर की इताअत करनी है। ये इनमें से कोई भी गवर्नमेंट लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है जो इस्लामी असूलों के मुताबिक चूज की जाए। ये नहीं मैं कह रही चल रही है या नहीं चल रही उसके मुताबिक, ये बात तो बात की है, जो उसके मुताबिक चूज की जाए। ठीक है, अच्छा जी। इवन ट्रेवल में भी अमीर बनाने का हुक्म है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस्लाम कहता है कि छोटी से छोटी चीज में भी, इवन आपने सफर भी करना हो तो अमीर बनाओ, इवन आपने नमाज भी पढ़नी हो तो एक अमीर बनाओ जो जिसको आप फॉलो करोगे, जो आपका इमाम बनेगा। इवन घर का निजाम है तो उसमें भी कवाम बना दिया, क्योंकि खैर इसी के अंदर है। हम आज लिबरल होने के मामले कहते हैं कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए, बच्चे कहते हैं हमें फ्रीडम हो, औरत कहती है मुझे विमेन लिब के नाम के ऊपर वो कहते हैं हमें आजादी होनी चाहिए। आजादी लेके क्या करोगे, अगर हम एक के नीचे रह के काम करोगे तो तभी उसमें खैर होगी। अगर हर एक आजादी चाहता है और हर एक कहता है कि मेरा चलना चाहिए और मेरा राइट मेरा राइट मेरा राइट, और मैं क्यों किसी के नीचे लग के उसकी बात सुनूं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें पता चलता है किसी ना किसी के अंडर आना पड़ेगा, चाहे आप मुल्क की सल्तनत चला रहे हैं चाहे आप घरों की चला रहे हैं। हु विल चूज इट्स फ्यू पीपल विल सिलेक्ट। जी खिलाफत में क्या होता है कि खलीफा को चंद लोग चुनते हैं, जो उस मुल्क के कोई ऐसे मुत्तकी लोग हों, जो ऐसे लोग हों जो इस काबिल हों, वो चुनते हैं ऐसे आदमी को, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबा नहीं चुना था, फिर उसके बाद उन्होंने हजरत उमर को चुना था, फिर उसके बाद उन्होंने एक जैसे यानी
रहमतुल्लाह
कमेटी सी बना दी थी उसमें लोगों ने चुना था आगे। तो ये नहीं होगा कि हर एक वोट दे दे के और लोगों को चुन रहा हो, चाहे किसी को अक्ल हो या ना हो। तो जहां पे भी मुसलमान होंगे वहां पे
अस्सलाम।
खलीफा होगा जी, एजुकेटेड मुत्तकी लोग। अच्छा ये बता सकती हैं आप कि जी राहत, आप बताएंगी कि क्या इस्लाम में एक से ज्यादा खलीफा हो सकते हैं किसी जगह पे?
जी नहीं, इस्लाम में एक से ज्यादा खलीफा नहीं हो सकते, क्योंकि इसलिए कि जो रियासत चुनी जाती है, रियासत मतलब होती है, उसमें एक ही खलीफा बना लिया जाता है, उसमें ज्यादा खलीफा शुमार नहीं किए जाते, क्योंकि जब एक की बैत ली जाती है ना, तो वही जायज है कि एक खलीफा की मौजूदगी में दूसरा खलीफा नहीं बन सकता।
शाबाश, ठीक
तो
है
फिर
भैया,
मुख्तलिफ मुल्कों का तसव्वुर नहीं है ना कि सब
सही,
मुसलमानों का, मुसलमानों के जो मुल्कों के हाकम हो और सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हो, तो
ठीक,
एक ही इलाके का अमीर हो और
जी
एक ही जिम्मेदार बनाया जाता है उसी को।
सही, शाबाश। अच्छा अब आप यहाँ पे देखें कि इस हदीस से हमें अगली से पता चलता है 1208 से कि एक ही खलीफा होगा। अच्छा कह रही हैं सर आ गए, एक से ज्यादा खलीफा का तस्वुर नहीं, और आप इसी से अंदाजा कर लीजिए आज की दुनिया को देख के कि हम इस्लाम के जो तरीके हैं उससे कितनी दूर जा चुके हैं, कितनी दूर जा चुके हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बाकी हम बातें नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। क्लास शुरू होने लगी है, इंशाल्लाह आप सब क्लास ज्वाइन कीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।